रहस्यवाद। रहस्य भावना प्राचीन है, लेकिन रहस्यवाद आधुनिक है और हिंदी में छायावादी काव्य आंदोलन से संबद्ध है। हिंदी साहित्य में रहस्यवाद शब्द का प्रयोग 1920 ईस्वी से पहले नहीं दिखाई पड़ता है, जब मुकुटधर पांडे, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद की नवीन कविताएं प्रकाश में आई तो उनकी आलोचना प्रत्यालोचना के सिलसिले में रहस्यवाद शब्द का प्रयोग किया गया। कविंद्र रविंद्र की अंग्रेजी गीतांजलि को देशी विदेशी आलोचकों ने मिस्टिक कहा था, इसलिए हिंदी में भी उस तरह की कविताओं को मिस्टिक और उनमें निहित धारा को मिस्टिसिज्म समझकर उनके लिए हिंदी शब्द रहस्यवाद चलाया गया। मई 1927 ईस्वी की सरस्वती में सुकवि किंकर नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आजकल के हिंदी कवि और कविता निबंध में इस विषय पर विचार करते हुए लिखा है कि इनोटेड कामा, अंग्रेजी में एक शब्द है मिस्टिक या मिस्टिकल। पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षित ने अपने त्रैमासिक कोश में उसका अर्थ लिखा है गूढ़ार्थ, गुह्य, गुप्त, गोप्य और रहस्य। रविंद्रनाथ की यह नए ढंग की कविता इसी मिस्टिक शब्द के अर्थ की द्योतक है। इसे कोई रहस्यमय कहता है, कोई गूढ़ार्थ बोधक कहता है और कोई छायावाद की अनुगामिनी कहता है। संभवतः उसी वर्ष माधुरी में अवध उपाध्याय ने रहस्यवाद पर लेखमाला प्रकाशित करवाई और 1928 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी काव्य में रहस्यवाद नाम से एक पुस्तक ही लिख दी। इस प्रकार रहस्यवाद छायावादी कविता की प्रवृत्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे चलकर आलोचना प्रत्यालोचना के सिलसिले में रहस्यवाद का विस्तार अतीत की काव्य प्रवृत्तियों के लिए भी किया गया और आधुनिक रहस्यवादी कवियों ने अपने पक्ष के समर्थन के लिए वेद, उपनिषद, शैवागम, तंत्र, नाथ, सिद्ध, कबीर, मीरा आदि की रचनाओं में रहस्य भावना खोज निकाली। प्राचीन साहित्य में रहस्यवाद की परंपरा दिखाने वालों में प्रसाद जी का नाम सबसे पहले लिया जाना चाहिए। उनका रहस्यवाद निबंध हिंदी में संभवतः इस तरह का पहला प्रयत्न है। पीछे महादेवी वर्मा ने भी अनेक उदाहरणों से रहस्यवाद की प्राचीन परंपरा दिखलाई। इसके विपरीत शुक्ल जी ने अपने ढंग से रहस्यवाद को भारतीय काव्य परंपरा से बाहर की वस्तु माना। यद्यपि जायसी को रहस्यवादी कहने की परंपरा उन्होंने ही कायम की, फिर भी वे रहस्यवाद को मुख्यतः आधुनिक काव्य प्रवृत्ति मानते थे। आज भी हिंदी में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे विद्वान हैं जो कबीर आदि प्राचीन संतों की कविता के लिए रहस्यवाद संज्ञा को अनुपयुक्त मानते हैं। निष्कर्ष यह है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद योगेन रहस्य भावनापन्न काव्य प्रवृत्ति तक ही रहस्यवाद को सीमित रखना समीचीन है। रहस्यवाद का एक निश्चित दर्शन है जिसके अनुसार सत्य रहस्य है और उसका केवल दर्शन होता है। सत्य का दर्शन सबको उस समय नहीं होता, विशेष व्यक्ति विशेष क्षण में ही सत्य को देख सकते हैं। ऐसे विशेष व्यक्ति को विशेष प्रकार की दृष्टि प्राप्त होती है जिसे कभी कभी अंतर्दृष्टि भी कहते हैं। प्राचीन काल में ऐसे सत्य दृष्टा ऋषि कहलाते थे और कवि भी जिसका अर्थ होता था दृष्टा। धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुह्याम एवं ऋषियो मंत्र दृष्टारः जैसे वाक्य रहस्यवाद के रहस्य और दर्शन के प्राचीन संकेत हैं। रहस्यवादी को ज्ञान की प्रतीति किसी रहस्य के उद्घाटन या अनावरण के बोध के रूप में होती है, जैसे कोई छिपा हुआ सत्य सहसा दिख गया हो। इस ज्ञान प्रतीति के बाद रहस्यदर्शी के लिए यह सोचना स्वाभाविक हो जाता है कि सत्य कोई रहस्यात्मक वस्तु है जो इस प्रतीयमान जगत के अंदर या पीछे कहीं छिपी हुई है, जिसके दर्शन स्थूल इंद्रियों के आवरण के कारण सामान्यतः नहीं होते। इसीलिए वह प्रतीयमान जगत को प्राय भ्रम या मिथ्या समझा करता है और वास्तविकता को अज्ञात ही नहीं बल्कि अज्ञेय भी मान बैठता है। जब प्रतीयमान जगत ही भ्रम है तो उसकी अनेकता एवं बहुलता भी अवास्तविक है। इसलिए रहस्यदर्शी प्रत्यक्ष जगत की अनेकता के परे एकता एवं भेद के परे अभेद को वास्तविकता मानता है। काल भेद और काल की वास्तविकता का भी निषेध इसी ज्ञान का परिणाम है और सांसारिक दुख एवं सामाजिक बुराइयां भी इसीलिए रहस्यदर्शी को अवास्तविक प्रतीत होती हैं। प्रतीयमान जगत की अवास्तविकता का बोध होने के बाद इस प्रतीति के साधनों में अविश्वास होना स्वाभाविक है। फलतः रहस्यदर्शी इंद्रिय बोध के साथ साथ बौद्धिक ज्ञान का भी निषेध करता है। रहस्य ज्ञान में इंद्रियों को प्रायः बाधक कहा गया है और बुद्धि को ज्ञान का शत्रु। रहस्यवादियों ने तर्क और बुद्धि का विरोध किया है, क्योंकि विश्लेषण परख होने के कारण बुद्धि सत्य को खंड खंड करती है और भेदों को सृष्टि करती है। इसलिए ज्ञानोपलब्धि की वैज्ञानिक पद्धति, जहाँ निरीक्षण परीक्षण विश्लेषण विवेचन आदि से युक्त एवं एक क्रमबद्ध एवं सुदीर्घ व्यापार है, वहाँ रहस्यवाद अंतर्दृष्टि से प्राप्त एक आकस्मिक घटना है। मिस्टिसिज्म एंड लॉजिक शीर्षक निबंध में बर्ट्रैंड रसेल ने विज्ञान के विपरीत रहस्यवाद की ज्ञान मीमांसा का विस्तृत विवेचन किया है। परंतु सच पूछा जाए तो रहस्यवाद ज्ञान से अधिक अनुभूति है। रहस्य दृष्टि वस्तुतः एक विशेष प्रकार की अनुभूति है। रहस्यवादियों ने प्रायः एक प्रकार की विलक्षण रहस्यानुभूति की चर्चा की है, जैसा कि विलियम जेम्स ने वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस नामक पुस्तक में लिखा है। रहस्यवाद चित्त की एक विशेष दशा या अवस्था है, जो कभी कभी विशेष प्रकार के मादक द्रव्यों से भी प्राप्त की जा सकती है। इस रहस्यानुभूति की सामान्यतः चार विशेषताएं होती हैं: अनिर्वचनीयता, झलक, क्षणिकता एवं किसी विराट सत्ता द्वारा पूर्णतः अधिकृत होने की अनुभूति। ये चारों प्रकार की अनुभूतियाँ धार्मिक संतों में प्रायः मिलती हैं और काव्य सृष्टि के समय कुछ कवि भी इन अनुभूतियों को अनुभव करते हैं। रहस्यानुभूति की सभी विशेषताओं का समाहार करते हुए क्लार्क ने धर्म का मनोविज्ञान नामक पुस्तक में लिखा है कि रहस्यवाद एक निश्चित किंतु आकस्मिक धार्मिक चेतना की अवस्था है, जो अंशतः सक्रिय एवं अंशतः निष्क्रिय होती है। यह असामान्यतः इतनी निजी होती है कि इसका वर्णन करना असंभव प्रायः है। अधिक से अधिक इसे प्रतीकों, पहेलियों या विरोधाभासों की भाषा में व्यक्त किया जा सकता है। इसमें रहस्यदर्शी किसी अलौकिक शक्ति की उपस्थिति का अनुभव करता है, जो उस व्यक्ति की जीवन दृष्टि को आमूल प्रभावित कर देती है। इस उपस्थिति के प्रति रहस्यदर्शी की आवेश परक भक्ति उसे नितांत असांसारिक जीवन मूल्यों की ओर ले जाती है, और वे जीवन मूल्य उसके आचरण को एक हद तक विचित्र बना देते हैं। फिर भी इस भक्ति के कारण उसके मनोजगत में एक प्रकार का अंतर्गठन दिखाई पड़ता है। इस प्रकार रहस्यवाद एक निजी विश्वास है, जिसके अनुसार सत्य उपलब्धि नितांत निजी एवं वैयक्तिक वस्तु है, और किसी सत्य कथन की सत्यता उस कथन से उत्पन्न होने वाली अनुभूति की तीव्रता से ही मापी जा सकती है। फलतः रहस्यवादी कविता का सृजन ही नहीं, बल्कि ग्रहण भी नितांत निजी एवं वैयक्तिक कार्य है। कुल मिलाकर बारोज डनहम के विदग्धतापूर्ण शब्दों में नोटट कामा, रहस्यवाद से ज्ञान न सही मुक्ति अवश्य मिलती है, क्योंकि रहस्यवादी सबका अतिक्रमण कर जाता है और वह मुक्ति भी सबको न सही स्वयं रहस्यवादी को अवश्य मिल जाती है। नोटट कामा वन। काव्य में रहस्य भावना एक प्रकार से परोक्ष की जिज्ञासा है। आधुनिक विज्ञान ने मनुष्य के सामने प्रकृति के अनेक रहस्यों को उद्घाटित कर दिया। मनुष्य को विश्व की विराटता का अनुभव नए ढंग से हुआ। वैज्ञानिक आविष्कारों तथा इन आविष्कारों की सहायता से प्रकृति के क्षेत्र में किए गए नवीन अन्वेषणों ने आधुनिक शिक्षित युवक के मानसिक क्षितिज का विस्तार किया। मध्ययुगीन अंधविश्वासों का स्थान जिज्ञासापूर्ण विवेक ने लिया। उसे संपूर्ण जीवन और जगत बदला हुआ लगा। चिर परिचित प्रकृति में उसे ऐसे बहुत से अपरिचित और सर्वथा नवीन तत्वों का आभास हुआ, जो दशा घर की श्वासरोधी अभेद्य दीवारों से घिरी हुई बहू की बाहर के उन्मुक्त वातावरण में आने पर होती है। वही मानसिक स्थिति पुरानी रूढ़ियों में जकड़े हुए आधुनिक मनुष्य की इस नए वातावरण में हुई। उसका मन सहस्त्र जिज्ञासाओं से भर उठा। प्रभात संगीत में संग्रहित रविंद्रनाथ की निर्झरीर स्वप्नभंग कविता, जिससे वे अपनी काव्य रचना का वास्तविक आरंभ मानते हैं, इस नवीन जीवन दृष्टि विजन को भलीभांति व्यक्त करती है। अजी ए प्रभाते रवि कर केमने पाशिलो प्रामेण पर केमने पशिलो गुहार आधारे प्रभात पाखिर गान ना जाने केनो रे एत दिन पारे जागिया उठेलो प्राण जागिया उठे छे प्राण और उथली उठे छे वार ओरे प्राणे तेर वेदना प्राणेर आवेग रुदिया राखिते नारी थर थर करी कांपी छे बहुधर शिला राशि राशि पड़ी छे खासे फूलिया फूलिया फेनेल सलिल गरजी उठी छे दारुण रोषे हेथाय होथाय पागलेर प्राय घोरिया घोरिया मातिया बेड़ाय বাহিরিতে চায় দেখিয়ে না পায় কোথায় কারার দ্বার। यह छंद ही और है, वृद्ध हृदय का आकुल आवेग अद्भुत लय में बह निकला है। निर्भीक भाव से समस्त चार दीवारी की चुनौती देता हुआ यह विद्रोह हृदय बाह्य प्रकृति के रहस्य को देखने के लिए आकुल हो उठा है। वीणा के कवि सुमित्रानंदन पंत ने यही जिज्ञासा शिशु सुलभ सरलता के साथ प्रकट हुई है। यहाँ रविंद्रनाथ का सा ओज और पौरुष नहीं, किंतु पंत की बाल जिज्ञासा में नवीन दृश्य के प्रति जो विस्मय और कुतूहल का भाव दिखाई पड़ता है वह भी उसी रहस्य भावना का एक रूप है। प्रथम रश्मि की जिज्ञासा कुछ इस प्रकार है कि जब कभी बाल भ्यंगिनी से पूछता है कि प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, और नक्षत्रों से आता हुआ मौन निमंत्रण भी उसी जिज्ञासा का दूसरा पहलू है, जिसमें नक्षत्रों के माध्यम से न जाने कौन कवि हृदय को नीरव निमंत्रण देता है। कवि के लिए संपूर्ण प्रकृति गूढ़ संकेतों से भरे हुए प्रतीत होती है और आलोकपूर्ण नवीन ज्ञान का प्रभात उसे स्वप्न में चौंका जाता है। ये रहस्य भाव अपन गान उसे संकेत और जागरण के प्रतीक हैं। आज सो एक को अज्ञात स्वप्न में चौंका गया प्रभात, गूढ़ संकेतों के हिलपात कह रहे हैं स्फुट बात, आज कवि के चिरचंचल प्राण पा गए अपना गान। कवि की यह रहस्यदर्शी दृष्टि दूर उन खेतों के उस पार जहाँ तक गई नील झंकार का भी पता पाना चाहती है। यह तो अज्ञात की ओर निश्चित संकेत मात्र है, अथवा प्रकृति के क्षेत्र के किसी अभिव्यक्ति सौंदर्य या माधुर्य से उठे हुए आह्लाद की अनुभूति की वंजना है। उसी को आचार्य शुक्ल स्वाभाविक रहस्यवाद मानते हैं। इसको समझते हुए वे कहते हैं, नोटेड कामा, शिशिर के अंत में उठी हुई धूल छाई रहने के कारण किसी भारी मैदान के क्षितिज से मिले हुए छोर पर वक्षावली की जो दुदली श्यामल रेखा दिखाई पड़ती है उसके उस पार किसी अज्ञात दूर देश का बहुत सुंदर और मधुर आरूप स्वभावतः आप से आप हो जाता है। विश्व के विशाल विभूति के भीतर न जाने कितने ऐसे दृश्य हमारी अंतर्वृत्ति को रहस्योन्मुख करते हैं। कामर, यह जो अज्ञात और असीम की अभिलाषा है वह वस्तुतः ज्ञात सीमाओं के असंतोष से उत्पन्न हुई है, और यह असंतोष तथा अभिलाषा केवल दिमागी अय्याशी नहीं है बल्कि इसका सामाजिक आधार है। यह असंतोष और महत्वाकांक्षा उस मध्यवर्गीय व्यक्ति की है जो मध्ययुगीन पारिवारिक और सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर उन्मुक्त वातावरण में सांस लेने के लिए आकुल हो रहा था। वह प्राचीन सीमाओं से तो परिचित था, लेकिन नवीन क्षितिज की कोई स्पष्ट रूपरेखा उसके मन में न थी। वह इतना ही जानता था कि इन सीमाओं से परे जो कुछ है वह असीम है, इसीलिए इन कविताओं में एक ओर असीम से मिलने की तड़प है तो दूसरी ओर कभी कभी उस असीम से मिल लेने का काल्पनिक सुख भी है। परंतु वस्तुतः वह असीम आकांक्षा का ही विषय रहा। जब रविंद्र ने असीम से चाहे सीमार निबिड़ संग सीमा चाहे होते असीमेर माझ्यहारा कहा, और महादेवी वर्मा ने जब असीम से हो जाएगा मेरी लघु सीमा का मेल, देखोगे तुम देव अमरता खेलेगी मिटने का खेल, गोया तो प्रकारांतर से दोनों ही व्यक्तियों ने अपनी पूर्ववर्ती मानसिक और सामाजिक सीमाओं को तोड़कर नवीन सीमाओं जिसे भावुकतावश वे असीम कहते थे के ही निर्माण अथवा प्राप्त की इच्छा व्यक्त की थी। पुराने लोगों के लिए असीम मजाक का विषय था, लेकिन नवीन व्यक्ति उसको सर्वथा वास्तविक और अमिट समझता था क्योंकि उसके प्रति उसकी अभिलाषा सच्ची थी, इसलिए वह उस सीमाहीनता का अनुभव भी कर लेता था। महादेवी जी को दृढ़ विश्वास है कि मैं अनंत पथ में लिखती जो अस्मित सपनों की बातें, उनको कभी न धो पाएंगी अपने आंसू से रातें। वस्तुतः यह युग ही ऐसा था जब सीमाहीनों से था मेरी लघुता का परिचय। मध्ययुगीन सामाजिक चार दीवारी की सीमाओं से आधुनिक कवि को इतना अधिक असंतोष था कि वह नवीन क्षेत्र में भी किसी प्रकार की सीमा को स्वीकार करने के लिए तैयार न था। वह सीमा मात्र को अभिशाप समझने लगा, इसलिए उसने साहसपूर्वक अपने मन के लिए सीमाहीन अनंत आकाश मांगा और फिर उस आकाश में निरंतर उड़ते रहने का सुख और इसी तरह अपनी जीवन लीला समाप्त कर देने का वरदान चाहा। इसी आकांक्षा को माँ देवी जी इस प्रकार व्यक्त करती हैं, दृत पंखों वाले मन को तुम अंतहीन न भोना और आते आते मिट जाऊं गाऊं पंथ की सीमा। अपने प्रिय से मिलन की अपेक्षा सदैव विरह की याचना करना इसी आकांक्षा की प्रेम संबंधी अभिव्यक्ति है। स्वच्छंद प्रेम की यह रहस्यवाद या विवंजना है। जिस समाज में अभिष्ट प्रिय की वैध रीति से प्राप्ति असंभव अथवा कठिन हो, जिस सामाजिक व्यवस्था में अपने स्नेह पात्र को प्रत्यक्ष रीति से वरण करने में अपमान की आशंका हो, उसमें चिरविरह की याचना के सिवा संतोष का और क्या उपाय है। इस समय की रहस्यवादी व्यथा वास्तविक की थी आध्यात्मिक प्रतिच्छाया है। असीम की तो कोई निश्चित सीमा नहीं, इसीलिए उसका अज्ञात रहना स्वाभाविक है। आधुनिक रहस्यवादी कवियों ने उनके प्रति बराबर अनजान संकेत किए हैं, क्योंकि वस्तुतः आने वाली दुनिया के बारे में उनकी जानकारी नहीं के बराबर थी। प्राचीन मर्यादाओं से तो वे पूर्व परिचित थे, किंतु बनने वाली नवीन मर्यादाओं की स्पष्ट जानकारी उन्हें न थी। नवीन समाज व्यवस्था उनके लिए अज्ञात ही नहीं, अव्यक्त भी थी। इसी को महादेवी जी ने अव्यक्त पूर्णता कहा है, और इसके विपरीत प्राचीन समाज व्यवस्था को अव्यक्त अपूर्णता। फलतः उनके अनुसार अपनी व्यक्त पूर्णता को अव्यक्त पूर्णता में मिटा देने की इच्छा ही रहस्यवाद है। लेकिन नवीन उनके लिए सर्वथा ज्ञात रहा हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। वस्तुतः उसकी रूपरेखा अस्पष्ट थी। नवीन का भी कुछ कुछ अनुभव अवश्य करते थे, परंतु ठीक ठीक उसे समझ नहीं पाते थे। यह संभवतः उनके भाववादी दृष्टिकोण की सीमा थी। वे उसे पूरा पूरा देख नहीं पाते थे, लेकिन उनकी झलक उन्हें अवश्य मिलती थी। इसी बात को वे प्रतीकात्मक ढंग से इस प्रकार कहते थे कि प्रिय तो आवरण में आता है, उसकी तो केवल झलक पर दिखाई पड़ती है। जब प्रसाद ने कहा कि शशिमुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधुली में कौतूहल से तुम आए, और महादेवी जी ने गाया कि रजत रश्मियों की छाया में दो मिल घनसा वह आता, अथवा मेरी प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना, तो प्रकारांतर से उन्होंने वास्तविक संबंधी अपनी स्पष्ट धारणा को ही व्यक्त किया है। रहस्यवादी काव्य में इस अस्पष्टता का बड़ा प्रमुख स्थान है, और इसे कवियों ने अनेक प्रकार के सुंदर प्रतीकों के द्वारा व्यक्त किया है। इनके यहाँ स्वप्न अथवा स्वप्न मिलन का जो इतना अधिक उल्लेख मिलता है, वह इसी भावना का प्रतीक है। यदि किसी का प्रिय सपने में आता है, तो किसी का प्रिय स्वयं सपना बनकर आता है। धीरे धीरे यह अस्पष्टता इन कवियों की सीमा हो गई, और इससे उन्हें मोह हो गया। वे बराबर उसी मानसिक स्थिति का आह्वान करने लगे। स्वप्न इनके लिए वरदान हो गया और जागरण अभिशाप। तत्कालीन समाज की पृष्ठभूमि में इस मानसिक स्थिति को समझा जा सकता है। राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले तत्कालीन नेताओं और बुद्धिजीवियों की दृष्टि में भी इस प्रकार की अस्पष्टता थी, और वे विवेक एवं तर्क संबद्ध बौद्धिक पद्धति को छोड़कर गांधी जी की अंतर्दृष्टि पर निर्भर रहने में कल्याण मानते थे। युगांत के बाद सन 36 में 1921 वाले पूर्ववर्ती युग का सिंहावलोकन करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि यूनाइटेड कामा, उस समय हम कर्म के आवेगपूर्ण प्रवाह में आगे बढ़ते रहे अस्पष्टता एवं तीव्रता के साथ, लेकिन अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्ट चिंतन का एकदम अभाव था। आज यह आश्चर्यजनक लगता है कि उस समय हम अपने आंदोलन के दर्शन, उसके सैद्धांतिक पक्षों एवं अपने निश्चित उद्देश्य की कैसे उपेक्षा की। गांधी जी ने स्वयं इस विषय पर अद्भुत रूप से मैं अस्पष्ट थे, और उन्होंने इसके बारे में स्पष्ट ढंग से सोचने के लिए प्रोत्साहित भी नहीं किया। गांधी जी ने किसी समस्या को बौद्धिक ढंग से हल करने पर भी कभी जोर नहीं दिया। वेद चरित्र और आचरण की पवित्रता पर जोर देते थे। राजनीति में लक्ष्य की अस्पष्टता, अबौद्धिक जीवन दृष्टि एवं भावावेग की तीव्रता काव्य के रहस्यवाद से किसी भी मामले में कम नहीं है। यहाँ तक कि इस राजनीतिक वक्तव्य की भाषा आश्चर्यजनक रूप में काव्यात्मक है। नेहरू जी के इस वक्तव्य से स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक हिंदी काव्य का रहस्यवाद तत्कालीन राजनीति एवं सामाजिक रहस्यवाद का एक अंग है। कवि के चारों ओर समय जैसा कठोर वातावरण था, उसकी चेतना उसके लिए स्वभावतः दुखदायी थी, लेकिन वस्तु स्थिति को भूलना जागृत स्थिति में संभव नहीं था। इसलिए वे जागरण की जगह स्वप्न का आह्वान करते थे, लेकिन स्वप्न की स्थिति स्थायी नहीं हो सकती। वस्तु स्थिति की चोट प्रायः स्वप्न भंग कर देती है, इसलिए स्वप्न भंग अथवा स्वप्न के बाद होने वाले जागरण को वह अभिशाप मानता है। इसी बात को महादेवी जी अपने ढंग से इस प्रकार कहती हैं, वह सपना बन आता, जागृति में जाता लौट। इसीलिए कुछ रसवादी कवि वस्तु स्थिति को भुलाने के लिए मदहोशी की सी हालत में रहना चाहते हैं। यदि महादेवी का प्रिय सपना बनकर आता है और जागृति में लौट जाता है, तो प्रसाद का प्रिय फारसी के उमर खय्याम, हाफिज रूमी वगैरह की तरह मादकता बनकर आता है और संज्ञा पर चला जाता है। मादकता से आए तुम संज्ञा से चले गए थे। कुछ रहस्यवादी कवियों को यहाँ इसलिए मद इस मन स्तुति का सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रतीक हो गया। विस्मृति, अज्ञान, मौग्ध, चिरशिशुता, संवेदनहीनता और अचेतनता इसी मनोस्थिति के विभिन्न रूप तथा तर्कसंगत प्रणतियाँ हैं। सामाजिक कटुता से बचने के लिए कुछ कवि सारा दोष बुद्धि और विवेक के सिर मढ़कर अज्ञान को ही वरण कर लेना श्रेयस्कर समझते हैं। कुछ कवि इसी अज्ञात को तर्कसंगत प्रणति पर ले जाकर चिरशिशु रहने का अभिनय करते हैं और कुछ लोग आत्मविस्मृत, संवेदनहीन तथा अचेतन हो जाना ही अच्छा मानते हैं। शिशुता को छोड़कर शेष सभी दशाएं प्रसाद में यत्र तत्र मिल जाएंगी। बुद्धि अथवा ईड़ा के विरोध के लिए उन्होंने पूरी कामायनी की रचना की, क्योंकि उसी का दूसरा नाम चिंता भी है। बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता, तेरे हैं कितने नाम, अरे पाप है तू जा चला जा, यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। और इसी के बाद आधुनिक मनु कहते हैं, विस्मृतिया अवसाद घेर ले, नहीं रोते बस चुप कर दे, चेतना चल जा जड़ता से, आज शून्य मेरा भर दे। वस्तुतः बुद्धि विरोधी कोरी सहृदयता अंततोगत्ता जड़ता अचेतनता और संवेदनहीनता के ही ओर ले जाती है, क्योंकि बुद्धि चेतना और संवेदनशीलता तो बार बार जगती की कटुता का अनुभव कराती रहती है। प्रसाद के ही शब्दों में, मनु का मन था विकल हो उठा, संवेदन से खाकर चोट, संवेदन जीवन जगती को जो कटुता से देता घोट। लेकिन मानसिक अस्पष्टता को जहाँ इस तर्कसंगत परिणति तक नहीं खींचा जाता, वहाँ रहस्यानुभूति की बड़ी ही सूक्ष्म और मार्मिक व्यंजना होती है। कामायने के काम सर्ग में इस गहन स्थिति का बड़ा ही सजीव चित्रण हुआ है। उन नृत्य शिथिल विश्वासों की कितनी है मोहमयी माया, जिनसे समीर क्षमता क्षमता बनता है प्राणों की छाया, आकाश रंध्र है पुरित से यह दृष्टि गहन सी होती है, आलोक सभी मूर्छित सोते है आँख तक ही सी रोती है, सौंदर्यमयी चंचल कृतियां बनकर रहस्य है नाच रही, मेरी आंखों को रोक वही आगे बढ़ने में जांच रही, श्रुतियों के चुपके चुपके से कोई मधुआ धारा घोल रहा, इस नीरवता के पर्दे में जैसे कोई कुछ बोल रहा, हाय स्पर्श मलय के झिलमिल सा संज्ञा हो संज्ञा को और सुलाता है, पुलकित हो आंखें बंद किए तंद्रा को पास बुलाता है, व्रीड़ा है यह चंचल कितनी विभ्रम से घूंघट खींच रही, छिपने पर स्वयं मृदुल कर से क्यों मेरी आंखें मीच रही, उठती है किरणों के ऊपर कोमल किसले के छाजन सी, स्वर का मधुर निस्वन रंध्रों में जैसे कुछ दुर बजे बंसी। मनोलोक के इस काव्यात्मक वातावरण को पढ़ते पढ़ते कबीराज मध्ययुगीन संतों की वे पंक्तियां याद हो आती हैं, जिनमें ब्रह्म रंध्र में निस्वन गूंजते हुए अनाहत नाद और गरजते हुए गगन का चित्रण है। लेकिन जो सूक्ष्म सौंदर्य प्रसाद की इन पंक्तियों में है, वह कबीर आदि के साधनात्मक प्रतीकों वाले वर्णन में कहा। अपनी इस अस्पष्टता के बावजूद रहस्य भावना आगे बढ़कर उस रहस्यमय तत्व के स्वरूप की भी कल्पना करती है। निसंदेह विस्मय, औत्सुक्य और अभिलाषा में भी एक प्रकार का सुख है, परंतु मनुष्य इतने ही से संतुष्ट नहीं होता, वह मन ही मन उस वस्तु का रूप भी निश्चित कर लेता है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में, एनोटेट कामा, अनिर्दिष्ट और धुंधली झलक या भावना में भी एक विशेष प्रकार का आकर्षण होता है, जो स्निग्ध विस्मय औत्सुक या अभिलाषा उत्पन्न करता है। घने कोहरे या जाले के बीच किसी के रूप माधुर्य की हल्की सी झलक मात्र पाकर हम केवल उत्सुक होंगे। इसी उत्सुकता की सतत प्रेरणा उसका रूप निर्दिष्ट करने के लिए हमारी कल्पना प्रवृत्त रहा करेगी। स्वाभाविक है कि कुतूहल उत्पन्न करने वाले उस रहस्यात्मक तत्व का स्वरूप जिज्ञासु के मन का ही प्रक्षेपण हो। भाववादी व्यक्ति प्रायः बाह्य जगत में भी अपने ही आंतरिक जगत की छाया देखता है। यहाँ तक कि भाववादी कभी कभी बाह्य जगत को अपने ही मनोजगत की अभिव्यक्ति अथवा उसका प्रसार मानता है। आत्मप्रसार की यह मनोवृत्ति उस युग के प्रायः सभी विचारकों और कवियों में दिखाई पड़ती है। वह युग व्यक्तिवाद के उत्थान का था। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को ही सर्वोपरि समझता था। उपनिषदों के अहम ब्रह्मास्मि का पुनरुद्धार करके इस सूत्र के द्वारा आधुनिक विचारकों ने अपने व्यक्तिवाद की ही अभिव्यक्ति की। उस समय स्वामी विवेकानंद तथा रामतीर्थ ने वेदांत की आधुनिक व्याख्या करते हुए पुराने शब्दों के आवरण में आधुनिक युग के व्यक्ति महत्व का प्रतिपादन किया है। संपूर्ण संसार के साथ अपना तादात्म्य करके अपने अहम को उसका प्रतीक कहना शक्तिशाली व्यक्तित्व के उत्थान का ही सूचक है। आत्मप्रसार की महत्वाकांक्षा को अंग्रेज कवि अबर क्रांबे ने सेल ऑफ सेंट थॉमस कविता की इन पंक्तियों से बहुत अच्छी तरह व्यक्त किया है। यूनाइटेड कामा, मनुष्य उतना ही बड़ा हो सकता है जितना बड़ा उसका अभिलाष होगा, अतः आत्मदृष्टि उतनी ही दूर तक बधीना रखो जितनी दूर तक ज्ञान और बुद्धि के दीपक का प्रकाश पहुँचता है। अपनी लालसा को अज्ञात के अंधकार की ओर छानबीन करने के लिए बढ़ाओ। संभव को जानकर उसके बाहर अनहोनी बातों और असंभव लक्ष्यों की ओर बढ़ो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे ज्ञान की लालसा का क्षेत्र भी आप से आप वैसा ही व्यापक हो जाएगा जैसा आत्मा का। इस तरह आधुनिक रहस्यवादी कवि ने शेष प्रकृति में अपने स्मृति अहम को प्रतिष्ठित किया और इसी को उसने परम सत्ता अथवा परम चेतना के नाम से अभिहित किया। प्रसाद जी ने इसी को विश्व सुंदरी प्रकृति में चेतना का आरोप कहा और महादेवी जी ने अनेक रूपता के कारण पर एक मधुरतम व्यक्तित्व के आरोपण की अभिधा दी। शेष प्रकृति के विभिन्न कार्यों और रूपों में निहित किसी एक कारण का पता लगाना मनुष्य के वैज्ञानिक विवेक का ही सूचक है। विज्ञान ने यदि एक और संपूर्ण प्राकृतिक शक्तियों के आंतरिक संबंधों की खोज करके किसी एक नियम की स्थापना करने का प्रयत्न किया तो दूसरी ओर कवियों ने भी रागात्मक ढंग से एक प्राकृतिक नियंता कारण ढूंढ लेना चाहा। जब प्रसाद जी से मन ने जिज्ञासा प्रकट की, तृण विरुद्ध लहलय हो रहे किसके रज से सिंचे हुए, तो उन्होंने उसी मूल कारण की ओर संकेत किया, परंतु उसे ठीक ठीक न जान सकने के कारण यह भी कहा, हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसको तो बार विचार न सह सकता। फिर भी उस अनंत रमणीय की विराटता का अनुभव ने अवश्य हुआ और उन्हीं के शब्दों में, हे विराट, हे विश्वदेव, तुम कुछ हो ऐसा होता भान। इस तथ्य को लक्ष्य करते हुए आचार्य शुक्ल अपने इतिहास में लिखते हैं कि ये कवि भक्ति क्षेत्र में उपास्य की एक देशीय धर्म विशेष में प्रतिष्ठित भावना के स्थान पर सार्वभौम भावना की ओर बढ़ रहे थे, जिसमें सुंदर रहस्यात्मक संकेत भी कर रहे थे। कवि अपनी कल्पना के द्वारा जब प्रकृति के बीच किसी वस्तु के गुण और अगुण संबंध प्रसार का चित्रण करता है अथवा जगत के अनंत रूपों और व्यापारों के बीच फैले हुए मोटे और महीन संबंध सूत्रों की झलक से दिखाकर नरसत्ता के सूनेपन का भाव दूर करने और अखिल सत्ता के एकत्व की आनंदमयी भावना लगाकर हमारे हृदय का बंधन खोलने की कोशिश करता है तो वस्तुतः वह उस सार्वभौम भावना को ही व्यक्त करता है। यह सार्वभौम भावना आधुनिक विश्ववाद की भी आध्यात्मिक छाया है। आधुनिक युग में वैज्ञानिक आविष्कारों ने पहली बार मनुष्य के ज्ञात जगत की सीमाओं का विस्तार किया और फिर संसार भर के मनुष्यों को एक दूसरे के संपर्क में ला दिया। इससे पहले भी संसार, विश्व, अखिल महिमंडल आदि संज्ञाओं का प्रयोग होता था, लेकिन इन संज्ञाओं की सीमाएं प्रायः अपने देश, द्वीप, महाद्वीप अथवा कुछ एक पड़ोसी देशों तक ही थी। रेल, जहाज, वायुयान आदि ने विभिन्न देशों, भूखंडों, समुद्रों आदि का पता लगाकर संसार की विराटता का बोध कराया। फिर डाक, तार, बेतार के तार, प्रेस आदि ने एक देश के भीतर तथा देश द्वेश के बीच बिखरे हुए लोगों में संपर्क स्थापित करके उनमें एकता और निकटता की भावना जगाई। इस तरह आधुनिक युग में राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता का अभ्युदय हुआ और लोग हर बात को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में रखकर सोचने के अभ्यस्त हो चले। भावनाओं को विश्ववाद का अनंत आकाश मिला। ऐसी स्थिति में आधुनिक कवि के लिए स्वाभाविक था कि वह जगत और प्रकृति के खंडों में एक सार्वभौम तत्व का अनुभव करे, लेकिन अच्छी तरह सोचने पर पता चलेगा कि इस सार्वभौम भावना का भी संबंध उसी व्यक्तिवाद से था। वस्तुतः वह सार्वभौम भावना भाववाद पर ही प्रतिष्ठित थी, इसीलिए उसे तत्कालीन व्यक्तिवाद का ही प्रक्षेपण समझना चाहिए। बहिर्जगत का एक अंतर जगत के एक ही की ही विराट छाया है। रविंद्रनाथ जब यह कहते हैं कि अखंड एक की मूर्ति किसी आकार में भी क्यों न रहे असीम को ही प्रकाशित करती है, तो वे प्रकारांतर से व्यक्ति मानव को ही गर्व देते हैं। कहना वे यही चाहते हैं कि व्यक्ति मानव उस अखंड एक का ही एक रूप है, इसलिए वह स्वयं भी अखंड एक और असीम है। महादेवी जी जब गाती हैं कि बीन बंद तार की झंकार है आकाश सारी, धूल के इस मलिन दीपक से बदा है तिमिर हारी, तो वे व्यक्तिगत आकार में निहित समष्टिगत एक को प्रकाशित करती हैं और रविंद्रनाथ इसी को कविता का उद्देश्य मानते थे। मानव धर्म, कला क्या है, साहित्य का तात्पर्य आदि निबंधों में उन्होंने अंग्रेजी के कैपिटल एम वाले जिस मैन को साहित्य का विषय माना है, वह सामान्य व्यक्ति मानव का ही भावनास्फीत तथा कल्पना रंजित विशाल रूप है। इसीलिए वे व्यक्तिगत एक के भीतर से समष्टिगत एक की अभिव्यक्ति को ही साहित्य का लक्ष्य मानते थे। रहस्यवादी कवियों में जो उस परम प्रिय से मिलने की बात बार बार कही जाती है वह इसी सार्वभौम भावना का काव्यात्मक रूप है। आचार्य शुक्ल जब कविता का कार्य शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह बतलाते हैं तो अपने ढंग से उस युग में व्याप्त उस सार्वभौम भावना को ही प्रतिध्वनित करते हैं। इस तरह सामाजिक पृष्ठभूमि पर रखकर देखने से रहस्यवादी काव्य की संपूर्ण परोक्षानुभूति प्रत्यक्षानुभूति ही सिद्ध होगी। आचार्य शुक्ल ने इस रहस्य का उद्घाटन काफी पहले कर दिया था। नोटेड कामा, वास्तव में इसी जगत के सुख सौंदर्य की आसक्ति या प्रेम है जो संचारी के रूप में आशा या अभिलाषा का उन्मेष करके इस सुख सौंदर्य को इसी अज्ञात या आध्यात्मिक क्षेत्र लोकोत्तर अगोचर अतीत भविष्य आदि में ले जाकर पूर्ण करने की ओर प्रवृत्त करता है। अज्ञात की लालसा का अर्थ वस्तुतः ज्ञात की लालसा है। लेकिन रहस्यवादी कवि इस प्रत्यक्ष जगत के द्वारा जो सदैव परोक्ष की ओर संकेत करता रहता है उसका अर्थ यह है कि वह जगत को उस परोक्ष सत्ता का उपलक्षण अथवा प्रतीक मात्र मानता है। रहस्यवादी कवि के लिए प्रकृति और मानव जगत की सार्थकता अपने आप में ही नहीं बल्कि उस सत्य में है जिसकी ओर वे संकेत करते हैं। फलतः रहस्यवादी कवि अनिवार्यतः प्रतीकवादी होता है। इसके लिए संसार की सभी वस्तुएं प्रतीक हैं। इस धारणा को वह तर्कसंगत परिणति तक ले जाकर इस प्रकार कहता है कि उस परम तत्व को प्रतीकों के ही माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। चूंकि वह संकेत मात्र है, पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, उसकी झलक भर दिखाई पड़ती है, इसलिए उसकी ठीक ठाक अभिधा नहीं हो सकती। जिसकी हमें झलक भर मिलती है उसे हम केवल झलक के रूप में ही जान और कह सकते हैं। जिसका हमें संकेत मात्र मिलता है उसकी ओर से संकेत मात्र कर सकते हैं। प्रतीक ऐसे ही शब्द हैं जो अपने अभिधार्थ के अतिरिक्त अर्थ व्यंजित करते हैं। जो सर्वथा अनिर्वचनीय है उसे केवल व्यंजित किया जा सकता है। इसीलिए रहस्यवाद व्यंजना प्रधान अथवा प्रतीकवादी काव्य होता है। जब रहस्य प्रतीक अधिक सांकेतिक हो जाते हैं तो रचना प्रायः अबूझ हो जाती है। रहस्यवादी कविता के प्रतीक प्रायः आवरण, अस्पष्टता, स्वप्न मिलन, आत्मविस्मृति, अज्ञात, आकर्षण, उन्मत्त खोज आदि के द्योतक होते हैं। आधुनिक रहस्यवादियों ने प्राचीन प्रतीकों के अतिरिक्त अज्ञात आकर्षण वाले प्रतीक विशेष रूप से दिए। समुद्र की ओर अनजाने आकर्षण से दौड़ती हुई नदी का वर्णन बहुतों ने किया है। यदि पंत जी नदी से पूछते हैं कि माँ उसको किसने बतलाया उस अनंत का पथ अज्ञात, तो प्रसाद जी भी गंगा को देखकर सोचते हैं कि वह जो समुद्र से मिलना चाहती है वह वस्तुतः विश्राम मांगती अपना जिसका देखा था सपना। हिंदी साहित्य में रहस्यवादी कविता का ऐतिहासिक महत्व है। इसमें मनुष्य में आत्मप्रचार तथा आत्मविश्वास की भावना जगाई, प्राचीनता की कारा में घिरे हुए मन को उन्मुक्त असीम वातावरण दिया, विश्व मानवता के सार्वभौम भावना उत्पन्न की, स्थूल तथ्यों को भेद कर जीवन सत्य को देखने के अंदर दृष्टि दी और गहन अनुभूति के क्षणों का स्थूल सूक्ष्म वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक चित्रण किया। जिस समय द्विवेदी युग की कविता स्थूल तथ्यों के संग्रह और कोरे वस्तु वर्णन में व्यस्त थी, रहस्यवाद के आविर्भाव के काव्य में जीवन के मौलिक सत्यों और रहस्यों के प्रति जिज्ञासा का भाव प्रतिष्ठित किया। जीवन की क्षुद्रताओं से मनुष्य को ऊपर उठाकर उसे उच्च भाव भूमि पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय रहस्यवाद को ही। द्विवेदी युग के सुधारवाद की अपेक्षा या आध्यात्मिकता कितनी ऊंची और रागपूर्ण थी इसका निर्णय दोनों युगों की किन्नी दो कविताओं की तुलना से सहज ही हो सकता है। लेकिन रहस्यवादी कविता की अपनी सीमाएं भी हैं। रहस्यवादी दृष्टिकोण से जीवन और जगत की समस्याओं को हल करना तो दूर, उन्हें ठीक से समझना भी असंभव है। रहस्यवाद ने सामाजिक समस्याओं को रहस्य बना दिया और फिर उन्हें रहस्य मानकर उनको रहस्यमयता में ही आनंद लेने का पाठ पढ़ाया। रहस्यवादियों का विश्वास था कि परम सत्य अज्ञात और अज्ञेय है और उसे ऐसा ही रहने देना चाहिए क्योंकि उसकी अज्ञेयता में ही आनंद है। उसे जान लेने पर तो सारा आनंद नष्ट हो जाएगा। इस तर्क प्रणाली के फलस्वरूप अबुद्धिवाद, श्रद्धावाद, आत्मविस्मृति, अचेतनता आदि प्रवृत्तियों का प्रचार हुआ और फिर रहस्यमय लोक में पलायन करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रहा। रहस्यवाद के प्रायः सभी रूप अकेली कामायनी में अच्छी तरह मिल जाएंगे। नवीन औद्योगिक व्यवस्था तथा विज्ञान से घबराए हुए मनु को भाग कर श्रद्धा जगत प्रपंच से दूर कैलाश शिखर पर ले जाती है। पूरी भावुकता मनुष्य को इसी तरह पलायन और एकांतवास की ओर घसीटती है। वह परिस्थितियों को समझने और समझकर संघर्ष करने की प्रेरणा नहीं दे सकती। यह नहीं, समस्याओं का हल वह शुद्ध भावालोक में ही करके संतुष्ट हो लेती है। जैसे श्रद्धा ने आकाश में बिखरे हुए ज्ञान, इच्छा और क्रिया के त्रिपुर को अपनी स्मृति मात्र से मिला दिया। बात यह है कि यथार्थ जगत में तो समस्याओं का समाधान कठिन है, किंतु भाव जगत में यह सब काम एक क्षण में हो जाता है, और इसके बाद तो बस आनंद विह्वल शिव तांडव नृत्य का दर्शन ही शेष है। मन ही मन समस्याओं को सुलझाकर आनंद से नाच उठना कितना सरल है। रहस्यवाद के इस हानिकारक रूप को देखते हुए ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस समय इसका घोर विरोध किया था। रहस्यवाद को नितांत भारतीय एवं काव्य की निजी प्रवृत्ति प्रमाणित करने के बाद भी रहस्यवाद के समर्थक इस तथ्य का खंडन करने में असमर्थ हैं कि जीवन और दोनों के समुचित विकास के लिए रहस्यवादी दृष्टि बाधक है। रहस्यवाद के बारे में शुक्ल जी की यह आपत्ति आज भी अपनी जगह एकदम सही है कि रहस्यवाद के काव्य की विषम वस्तु संकुचित हुई है, और यदि रहस्यवाद का प्रभाव व्यापक होता तो सारा छायावादी काव्य असीम और अज्ञात प्रेतम के प्रति अत्यंत चित्रमयी भाषा में अनेक प्रकार के प्रमोदगार तक ही बद करा जाता। रहस्यवादी कविता का प्रचलित भाव व्यापार, हृतंत्री की झंकार, नीरव संदेश, अभिसार, अनंत प्रतीक्षा, प्रियतम का दबी पावाना उस समय शुक्ल जी को कृत्रिम लगा तो आज भी शायद ही किसी को वास्तविक लगे। यह तथ्य है कि छायावादी कविता के रहस्यवादी रूढ़ियाँ उस युग के साथ ही विला हो गई, और उन रहस्यवादी रूढ़ियों में आज भी किसी भी काव्य से हृदय को रस नहीं मिलता। शुक्ल जी उसे स्वाभाविक या प्राकृतिक रहस्य भावना कहते थे, जिसे व्यंजित करने वाले छायावादी कविताएं ही आज की अपेक्षाकृत कुछ अच्छी लगती हैं, शायद अपनी काव्यात्मक जिज्ञासा, कौतूहल एवं विस्मय के कारण। रहस्यवाद पर विचार करते हुए विद्वानों ने प्रायः वेद उपनिषद से लेकर आधुनिक युग के रहस्यवादी कवियों का हवाला दिया है और सभी युगों की रहस्य भावना को एक सी मानकर विवेचन किया है। यदि महादेवी वर्मा ने रहस्यवाद पर लिखते हुए आधुनिक रहस्यवाद की कड़ी वेद उपनिषद, जायसी मीरा आदि से जोड़ी है, तो पंडित हरिकृष्ण द्विवेदी ने भी कबीर की रहस्य भावनाओं को समझाने के लिए रविंद्रनाथ के विचारों और कविताओं को निर्विशेष भाव से उद्धृत किया है। इस तरह उन्होंने कबीर और रविंद्रनाथ की रहस्य भावनाओं को बहुत कुछ एक कर दिया है। उधर महादेवी जी भी आधुनिक रहस्यवाद को संपूर्ण रहस्य परंपरा का सम्मिश्रण मानते हुए कहते हैं कि नॉटकामा उसने पराविद्या की और पार्थिवता ली, वेदांत की अद्वैत की छाया मात्र ग्रहण की, लौकिक वेग से तीव्रता उधार ली और उन सबको कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य भाव सूत्र से बांध कर निराले स्नेह संबंध की सृष्टि कर डाली, जो मनुष्य के हृदय को पूर्ण अवलंब दे सका, उसे पार्थिव प्रेम के ऊपर उठा सका तथा मस्तिष्क को हृदयमय और हृदय को मस्तिष्कमय बना सका। यूनाइटेड कामपन उसके अनुसार आधुनिक रहस्यवाद इसी बात में पूर्ववर्ती साहित्य रहस्य काव्यों से भिन्न है कि इसमें उन सब की विशेषताओं के सम्मिश्रण से एक नवीन भावना तैयार हो गई। विचारों को समाज से परे रखकर जब उनका इतिहास लिखा जाता है तो इसी तरह की स्थापनाएं की जाती हैं, जिसमें युग युगांतर में बिना किसी भेद और अंतर के एक ही बात आद्योपांत व्याप्त दिखाई पड़ती है। इसीलिए रहस्य भावना की परंपरा को भी समाज से अलग करके देखने से यही प्रतीत होता है कि वेद उपनिषद से लेकर आज तक सर्वत्र एक ही प्रकार की जिज्ञासा, उत्सुकता, असीम की कल्पना, असीम ससीम का मिलन, परम सत्ता की रहस्यमयता और अस्पृश्यता आदि बातें मिलती हैं। लेकिन इन भावनाओं को सामाजिक परिदृश्य में रखकर देखते ही विभिन्न युगों की रहस्य भावनाओं की विशेषताएं स्पष्ट होने लगती हैं। सबसे पहले प्राकृतिक रहस्य भावना को ही लें। प्राकृतिक शक्तियों में किसी एक परम शक्ति से अनुशासित तथा आकर्षित होने का भाव वेद और आधुनिक रहस्यवादी कवियों में समान रूप से मिलता है, लेकिन मध्ययुगीन संत कबीर में नहीं मिलता। जायसी ने उस परम सत्ता के विरह में अखिल प्रकृति को जलते हुए तो दिखलाया, किंतु उसमें साज आकांक्षा और उत्सुकता का अनुभव ही नहीं है। इसका कारण स्पष्ट है, मध्ययुगीन मानव के लिए प्रकृति के रहस्यों में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वैदिक और आधुनिक मानव के लिए प्रकृति का जैसे नया नया परिचय प्राप्त हुआ था। वैदिक मानव ने तो प्रकृति के रहस्योद्घाटन और संघर्ष से ही अपना जीवन प्रारंभ किया, और वैदिक युग के बाद इतने बड़े पैमाने पर प्रकृति के साथ संघर्ष आधुनिक वैज्ञानिक युग में ही आरंभ हुआ। इन दोनों युगों में मनुष्य ने प्रकृति के साथ संघर्ष इसलिए किया कि उसके वन्य रूप पर विजय प्राप्त करके फिर से उसके साथ पहले से अधिक अच्छारागात्मक संबंध स्थापित किया जा सके। यह तो हुई दोनों युगों की सामान्य बातें, लेकिन वैदिक युग और आधुनिक युग की प्रकृति और मानव का संबंध एक से नहीं है। प्रकृति के वैदिक मानव में जो सहज कुतूहल और किंचित भय मिश्रित औत्सुक्य था, वह आधुनिक मानव में नहीं है। आधुनिक मानव के कुतूहल और औत्सुक में अपेक्षाकृत अधिक गूढ़ता और सूक्ष्मता है, क्योंकि आधुनिक मानव के लिए प्रकृति अधिक ज्ञात हो गई है। यदि अथर्व का गायक नदी को देखकर यह पूछ बैठता है कि यत्र प्रेपसिंतरी पियंतप्या स्कंभम तन ब्रूहि कतम स्विदेश, अर्थात ये सरिताएं जहाँ पहुँचने की अभिलाषा से चली जा रही हैं, उस परम आश्रय को बताओ वह कौन है, तो आधुनिक युग के प्रसाद जी इसी को थोड़ा और गुड़ बनाकर कहते हैं कि इस नदी ने जिस सागर को सपने में देखा था उसी में विश्राम मांगती है, विश्राम मांगती अपना जिसका देखा था सपना। इतना ही नहीं, आधुनिक कवि ने प्रकृति में जो अपने लिए होने वाले विविध गूढ़ संकेतों की कल्पना कर ली, वह आदि युग के सरल गायकों के लिए संभव नहीं था। फिर संभवतः न तो व्यक्तिवादी हो पाए और न इतने कल्पनाजीवी ही। पंत जी को नक्षत्रों से मौन निमंत्रण देता है, तड़ित से जो इंगित करता है, सौरभ से जो संदेश भेजता है, लहरों के कर उठाकर जो बुलाता है, खद्योतों से जो पथ दिखलाता है, उस ढुलकाकर जो दृघ सींचता है और स्वप्न में जो छाया जग में फेरता है, वह कोई वैदिक कोई से कहीं अधिक रहस्यमय और अधिक सूक्ष्म ढंग से संकेत करने वाला है। उसका निमंत्रण ही नहीं, इंगित, संदेश, आह्वान आदि सब कुछ मौन है। व्यवहार की यह बारीकी अत्यंत विकसित सभ्यता में भी संभव है। ध्यान खींचने के लिए उसमें ढुलक जाने की कल्पना तो वैदिक युग का मानव नहीं कर सकता था, लेकिन आधुनिक कवि के हम न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृग मौन। आधुनिक युग की इस कोमलता के लिए वैदिक युग के प्राकृतिक प्रतीक कहीं अधिक विराट और प्रचंड है, क्योंकि उससे मय प्रकृति भी अपने आदिम दुर्धर्ष और प्रचंड रूप में थी। इसी तरह सार्वभौम भावना के बारे में भी इन युगों का अंतर देखा जा सकता है। आधुनिक कवियों ने उपनिषद के अहम ब्रह्मास्मि और सर्वम खालिद्वम ब्रह्मम सूत्र को इतना दोहराया कि आलोचकों ने प्रायः आधुनिक सार्वभौम भावना को उपनिषद युग का ही पुनरुत्थान समझ लिया, लेकिन थोड़ा सा अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाएगा कि स्वामी विवेकानंद और रविन्द्रनाथ के विश्व मानव की विराट कल्पना के सामने उपनिषद का ब्रह्म और भूमा अधिक सूक्ष्म, अधिक वायवी और अधिक स्थिर है। उपनिषद का विराट तत्व प्रायः आनंदमय है, जबकि विवेकानंद और रविन्द्रनाथ का विराट तत्व शक्तिपुंज और भोजपूर्ण है। इतना ही नहीं, रविन्द्रनाथ ने तो परम तत्व को उपनिषदों से आगे बढ़कर गतिमय बयान किया है। एक स्थल पर उन्होंने ईश्वर को चिरचंचल और मानव को चचलेर सहचर कहा है। परम तत्व की गत्यात्मकता की बात कहीं कभी कह सकता है वही कभी कह सकता है जिसका युग वैज्ञानिक विकास के कारण अति गतिमय तथा शीघ्र शीघ्र होने वाले परिवर्तनों से भरा हो। अपेक्षाकृत स्थिर और कम परिवर्तनशील कृषि युग के उपनिषद यत्किंचत जगत्याम जगत कहते हुए भी इस प्रकार न तो जगत की गत्यात्मकता की बात कर सकते थे और न ब्रह्म की ही। यही बात परम तत्व की विराटता के बारे में भी लागू होती है। आधुनिक युग की सी विराट कल्पना न तो उपनिषद के सांकेतिक सूत्रों में मिलती है और न कबीर के पिंड में से व्यक्त होने वाले ब्रह्मांड और शून्य में, और न जायसी के उस पारस रूप में ही जो पद्मावती के रूप में के माध्यम से रह रहकर अपने विश्वव्यापी अलौकिक रूप की झलक दिखाया जा करता है। इसका मुख्य कारण यही है कि आधुनिक युग में विश्व की व्यापकता तथा विभिन्न देशों में रहने वाली मानव जाति की भावात्मक एकता का अनुभव जिस प्रकार किया गया पहले कभी नहीं किया गया। सूर्य चंद्र को उस परम पुरुष की आंखों तो पहले ही कहा गया, किंतु ऐसे पुरुष की वसुधा चरण चिन्ह से बनकर यही पड़ी रह जाएगी जैसे विराट कल्पना आधुनिक कवि प्रसाद ही कर सकते थे। इसी प्रकार प्राप्तव्य परम तत्व के रहस्यमयता और अस्पष्टता के विषय आधुनिक कवि पूर्ववर्ती कवियों से आगे बढ़ा हुआ है। वैदिक गायक के लिए परम शक्ति के ऊपर कोई आवरण नहीं, लेकिन उपनिषद में सत्य का मुख हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ कहा गया है। फिर भी उपनिषद का जिज्ञासु उस विहान को हटाकर सत्य को देखने के लिए प्रयत्नशील है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहिति मुखम तत्त्वं पुषन्न पावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। कबीर तक आते आते वह शून्य हो गया, उसकी सूक्ष्मता इतनी बढ़ गई कि वह अनुभव गम्य रह गया और साथ ही अनिर्वचनीय भी। जायसी के यहाँ भी उसका प्रतिबिंब ही देखा जा सकता है, स्वयं उसे नहीं और उस प्रतिबिंब को भी पकड़ा नहीं जा सकता। सरग आई धरती मह छावा, रहा धरती पय धरत नावा। लेकिन आधुनिक कवि का प्रिय उस धूमिल मन के समान है जो रजत रश्मियों की छाया में आता है। एक तो वह स्वयं धूमिल घन है, दूसरे रश्मियों की छाया में छिप कर आता है। ऐसा लगता है कि अपने युग की वास्तविकता को उपनिषद के कवि ने जितने स्पष्ट रूप से समझा था, उससे कम स्पष्ट रूप में कबीर, जायसी आदि संतों ने समझा और आधुनिक युग के कवियों ने उनसे भी कम स्पष्ट रूप में समझा। इसका एक कारण तो यह है कि वास्तविकता क्रमशः अधिक जटिल और गहन होती गई, और दूसरा शायद यह भी कि इन सभी भाववादी कवियों का दृष्टिकोण ही क्रमशः वस्तुनिष्ठता से अत्यंत व्यक्तिनिष्ठता की ओर अग्रसर होता चला गया। इस प्रकार अपनी सीमा के बंधन से छुटकारा पाने की जितनी अधिक तड़प आधुनिक रहस्यवाद में दिखाई पड़ती है, उससे बहुत कम कबीर आदि मध्ययुगीन संतों में मिलती है और वेदोपनिषद में बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। इसका शायद कारण यह है कि जात पात आदि की सामाजिक रूढ़ी जब जितनी अधिक कड़ी रही, उस युग में सीमा से मुक्त होने की आकांक्षा भी उसी मात्रा में व्यक्त हुई। ऋक् का गायक अपने बंधन का आभास देता हुआ बस इतना ही कहता है, पृक्षे तदेनो वर्णम त्रिदीक्षोपो एमी चिकितुषो विपिक्षम। अर्थात हे वर्णीय, मैं दर्शनाकांक्षी होकर तुमसे अपना वह दोष पूछता हूँ जिसके कारण ही मैं यहाँ बधा हुआ हूँ। मैं दर्शन का अभिलाषी जिज्ञासु तेरे समीप आया हूँ। लेकिन कबीर जिस आकुलता के साथ हद और बेहद दोनों से परे किसी आनंद लोक में जाना चाहते हैं, वह अभूतपूर्व है। कबीर जिस कल्पना लोक में निवास करते हैं, उसका वर्णन उन्हीं के शब्दों में, हम वासी हैं उस देश के जहाँ 12 मास वसंत, नीझर झरे महा अमी बीजत है सब संत। हम वासी उस देश के जह जाति वर्ण कुल नाहीं, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नाहीं। और आधुनिक कवि तो और भी अधिक विद्रोही उठा और अपनी चंचलता के मारे चिल्ला उठता है, आमी सुदूरेर प्यासी। वह न जाने क्या चाहता है, उसकी प्यास किस दूर देर की है, दूर देश की है। सीमा के प्रति इतना विद्रोह और असीम के लिए इतनी झड़प आधुनिक असंतुष्ट हृदय के लिए ही संभव है। कबीर के यहाँ स्पष्ट विरह वेदना है, लेकिन यहाँ गूढ़ गहन असंतोष है जिसमें आंसू कम ढुलकते हैं और स्पष्ट अंतर्दा अधिक होता है। इसी प्रकार प्रतीकों के माध्यम प्रयोग में भी आधुनिक रहस्यवाद बहुत अधिक समृद्ध है। आधुनिक युग कल्पना वैभव का है। स्वच्छंद कल्पना के द्वारा आधुनिक रहस्यवादी कवियों ने जितने प्रकार के अप्रस्तुत विधान की सृष्टि की, वह उपनिषदों और संतों के यहाँ दुर्लभ है। इस प्रकार विचार करने से रहस्य भावना की परंपरा के विभिन्न युगों की और भी निजी विशेषताओं का पता चल सकता है और उनकी तुलना में आधुनिक रहस्यवाद के अन्य पक्षों पर प्रकाश पड़ सकता है। सामाजिक आधार की दृष्टि से भी हिंदी का आधुनिक रहस्यवादी काव्य मध्ययुगीन संतों के रहस्यात्मक काव्य एवं आधुनिक यूरोपीय प्रतीक रहस्यवाद से भिन्न है। मध्ययुगीन संतों का रहस्यवाद प्राय जाति प्रथा, ऊंच नीच के विचार, पुरोहितों से अत्याचार एवं सामंत शोषणों के विरुद्ध विद्रोह से जुड़ा हुआ है। मध्ययुगीन रहस्यवाद उस युग के किसानों, कारीगरों एवं अछूतों की जीवन दृष्टि का सूचक है। दूसरी ओर आधुनिक यूरोप का रहस्यवाद पूंजीवादी संध्या के हताश मध्यवर्ग की यथार्थ भेरु प्रतिक्रियावादी विचारधारा से प्रेरित है। इन सबके विपरीत भारत के दूसरे दशक का रहस्यवाद अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों की जीवन दृष्टि का अंग है, जिसके सामने बहुत दिनों तक अपने लक्ष्य का बोध स्पष्ट नहीं था, किंतु पराधीनता से मुक्त होने की आकांक्षा प्रबल थी। चूंकि पुरानी रूढ़ियों से मुक्त होने की इच्छा इस युग में भी मौजूद थी, इसलिए कहीं कहीं आधुनिक रहस्यवाद में भी मध्ययुगीन रहस्य भावना की झलक मिल जाती है और यहाँ का शिक्षित वर्ग यदा कदा यूरोप की आकर्षक पतनोन्मुख विचारधाराओं के मोहपाश में आ जाता था। इसलिए यथा तत्र उसमें पश्चिमी प्रतीक रहस्यवाद के भी कीटाणु मिल सकते हैं, किंतु कुल मिलाकर हिंदी का आधुनिक रहस्यवाद अपने सामाजिक आधार एवं साहित्यिक अभिव्यक्ति में उक्त दोनों रहस्यवादों से भिन्न एवं विशिष्ट है।